जब भी हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हमारे लिए उसको जो हमारा एक जो हमारा नॉर्मल रूटीन में कभी हमारा जो बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी आ जाती है उससे उसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है. मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए समझ लेना बहुत ज़रूरी है. जैसे खुश फील करना या कभी रोना या कभी हर्ट फील करना, ये बहुत कॉमन एक्शंस हैं जो हम कभी आज या कल कभी ना कभी हम लोग इसमें एंगेज रहते हैं, महसूस रहते हैं
जी.
तो जैसे बहुत बार ये देखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि वी एक्ट एज द सिचुएशन डिमांड्स अस टू एक्ट, और हम लोग अपने जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल कर देते हैं, बिहेवियर्स को भी कंट्रोल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्स जो प्रेविलेंट है सोसाइटी में. कि जैसे आपने कहा कि कभी आपको 2 महीने में 4 महीने में किसी बात पे बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हो बिकॉज वो नॉर्म बना है सोसाइटी का. मतलब सोसाइटी में ये रीति ऐसी बनी है कि आपको हर बार अपना गुस्सा नहीं दिखाना है. किस जगह पे दिखाना है, कहीं पे नहीं दिखाना है, वो भी एक मैटर करता है. लेकिन कभी अगर हमारा बिहेवियर इस तरह का हो जाए कि इट इज़ परसीव टू अकर विदाउट एनी रीज़न, जैसे आपने कहा ये तो एक अलग एक
रीज़न है किसी पर्टिकुलर बात पे,
पर्टिकुलर बात पे आ गया, और दूसरा आपने कहा कि कभी हमेशा ऐसा होता है कि किसी एक चीज़ को देख के मुझे हमेशा गुस्सा आता है, कोई कॉज नहीं है, कोई रीज़न, कुछ भी हो सकता है, या मुझे डर लगता है या परेशानी होती है या फियर होता है. तो जब बिना किसी कॉज के कोई बिहेवियर अकर करता है तो उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इसे हम नॉर्मल बिहेवियर नहीं कहेंगे. बल्कि मैं ये कहूँगी कि जब बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कॉज के हम मान लीजिए किसी बात पे बिना बात के गुस्सा कर जाएं या बिना बात के घबरा जाएं, कोई रीज़न ही नहीं है, तो उसे हम नॉर्मल बिहेवियर नहीं, उसे हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे. लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम इरैशनली बिहेव कर देते हैं और कभी कभी नॉर्मल बिहेवियर से हट जाते हैं. तो क्या उसका ये मतलब है कि हम एबनॉर्मल हो गए हैं? पर ऐसा तो नहीं है कि अगर कभी कभी तो लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ भी जाती हैं कि हम रास्ता भटक जाते हैं या हम कभी बिना सोचे इरैशनली बिहेव कर देते हैं. कभी होता भी है कि बिना सोचे समझे हम परेशान हो जाएं या इरैशनली बिहेव कर दें. तो हर बार हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक भी बार मैंने ऐसा बिहेव कर दिया
तो मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है,
ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है. कभी ना कभी हम अपना बैलेंस किसी सिचुएशन में लूज कर जाते हैं. मे बी आज मैं जिस बात के लिए डर रही हूँ उसका कॉज कोई डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, बट क्या पता उसका कॉज किसी और बात से मेरा क्या मूड स्टेट
है और क्या परिस्थितियों से मैं
गुजरी हूँ, या फिर जैसे मान लीजिए मैं किस इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से जा रही हूँ, तो मैं घर पे किस इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रही हूँ, ऑफिस में किस दौर से गुजर रही हूँ, और वो चीज़ें मेरे घर के काम में इफ़ेक्ट करें या मेरे घर की चीज़ें मेरे ऑफिस के काम में इफ़ेक्ट करें,
ये ह्यूमन बिहेवियर
ये ह्यूमन बिहेवियर हो सकता है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है. तो आज हम यही जानना चाहेंगे, बेसिकली मैं यही बताना चाहूँगी कि ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हैं, किस किस तरह के हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ये जान लेना ज़रूरी है कि हम हमेशा कभी भी किसी भी छोटे से अगर हमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि हम वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कि इट इज़ अ डिसऑर्डर, मतलब जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो वो बेसिकली एक डिसऑर्डर है जो प्रेजेंट करता है इंडिविजुअल को ऐसे फंक्शनिंग में कि वो इनइफेक्टिवली बिहेव करता है किसी भी सोशल सेटिंग में या सोशल टर्म में. दैट मीन्स कभी भी कोई इंडिविजुअल जब इनइफेक्टिवली किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में डील करता है या बिहेव करता है तो हम कह सकते हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. वो इनइफेक्टिवली कैसे होता है, जैसे कि जो नॉर्म्स सोसाइटी के बने हैं जब हम उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं करते हैं और उन नॉर्म्स से डेविएट होके जब हम बिहेव करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. इसके बारे में अभी हम और थोड़ा सा जानेंगे. जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसा पैटर्न ऑफ बिहेवियर या कुछ इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसफंक्शंस जिसकी वजह से आपको सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में आप आ जाते हैं या आपकी जो एबिलिटी है काम करने की या फिर और भी कुछ भी जो आपके तौर तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, जब उन उन तौर और तरीकों में ज़िंदगी जीने में या कहीं किसी चीज़ में काम करने में जब आपको परेशानी आ जाती है और रेगुलरली आने शुरू होती है, तो हम कह सकते हैं कि किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जो इम्पॉर्टेंट फीचर रहता है इन सिम्टम्स का, वो ये होता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल जब वो ऐसे डिपार्चर्स, सीरियस डिपार्चर्स शो करता है उन नॉर्म्स से जो हमारी सोसाइटी में है। कहने का अर्थ ये है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में तब कहूँगी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जब कोई व्यक्ति इस तरह से बिहेव कर रहा है कि वो हमारी जो सोसाइटी में नॉर्म बना है, जो सोसाइटी में जीने का तरीका बना है, उस तरीके से कम्प्लीटली उल्टा जाके, अलग तरह से जाके कोई इंडिविजुअल जब बिहेव करता है। कल्चरल और सोशल नॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो उन पे हम इस यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हर एक ट्रेडिशन और हर एक कल्चर का एक दूसरे से अलग होना जाहिर है, वो हमेशा अलग रहते हैं। कुछ एक्शंस जो होते हैं किसी एक कल्चर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं और उसी वही सेम एक्शंस किसी और कल्चर में किसी तरह के डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। दैट मींस पहले तो मैंने ये कहा कि जब भी कोई इंडिविजुअल जो सोसाइटी में नॉर्म बना है उसके विपरीत जाके कोई भी एक्शंस करता है, रेगुलरली करता है, तो उसे हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पर इस बात के साथ ये समझ लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं तो हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी सोच लेना चाहिए कि वो इंडिविजुअल कौन से कल्चर से आता है। मे बी जिस कल्चर में हम रहते हैं वो उस कल्चर से नहीं आता। और इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मान लीजिए किसी एक कल्चर में कोई बात को अच्छा माना जाता है तो वही सेम बात को किसी और कल्चर में अच्छा नहीं माना जाता है। तो किसी भी बिहेवियर का आंकलन करते हुए कल्चरल को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि कोई इंडिविजुअल नॉर्म्स के साथ एक्ट कर रहा है या नॉर्म्स के विपरीत एक्ट कर रहा है। और अगर विपरीत भी एक्ट कर रहा है तो इसमें ये समझ लेना इम्पॉर्टेंट है कि क्या जिस कल्चर से वो आता है ये उस कल्चर का कहीं स्वाभाविक तो नहीं है कि उसके अपने कल्चर में इसी तरह से बिहेव किया जाता है। उनकी हैबिट्स, लिविंग हैबिट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए एबनॉर्मेलिटी को डिफाइन करने से पहले। अब अगर मैं ये कहूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नॉर्मल है या कोई एबनॉर्मल है, तो उसके लिए कुछ कंसीडरेशंस बनाई गई हैं कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया बन जाएगा ये बताने के लिए कि बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ये 7 क्राइटेरियाज या 7 कंसीडरेशंस हैं। पहला है सफरिंग, मतलब किसी को भी किसी चीज़ से सफरिंग होता है, परेशानी होती है, जैसे कि वो डिस्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा है या बहुत ज़्यादा डिसकंफर्ट अपनी लाइफ से किसी इंडिविजुअल को हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक निशानी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। दूसरा हम कहते हैं मैलअडैप्टिवनेस। मैलअडैप्टिवनेस का मतलब कि किसी इस तरह के बिहेवियर में इंगेज करना या इस तरह के थॉट पैटर्न में इंगेज करना जो आपको आपका ज़िंदगी जीने के लिए बहुत मुश्किल बना देता है, वो होता है मैलअडैप्टिवनेस, कि आप अपने लाइफ में अच्छे से अडैप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, नहीं जी पा रहे हो, आपका तरीका ही गलत हो गया है ज़िंदगी जीने का। फिर है इरैशनैलिटी, ये तीसरा एक कंसिडरेशन है, मतलब हमारा बिहेवियर जो है इरैशनल है, जैसे कि अनेबल टू कम्युनिकेट इन अ रीजनेबल मैनर विद अदर्स। हम जब भी दूसरों के साथ बात करते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड तरीके से, या कोई रीज़न नहीं है, बिल्कुल रीज़नेबल मैनर में हम जब दूसरों के साथ बात नहीं करते हैं, कोई भी किसी भी तरह की बात हम किसी भी इंडिविजुअल से किसी भी सिचुएशन में करेंगे, मतलब हमारी बातचीत में भी जब डिफरेंस आने शुरू हो जाता है, इरैशनैलिटी आने शुरू होती है, किसी बात करने का कोई बेसिस नहीं होता, तब भी वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सिम्टम हो सकता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है जो हम उस तरह से एक्ट कर रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए कि अगर मैं एक उदाहरण दूँ तो अभी मेरा काम है कि मैं आपसे बात करूँ और अपना ये PCP जो है वो डिलीवर करूँ, लेकिन अगर मैं इससे बिल्कुल एंटायरली अनएक्सपेक्टेड वे में किसी के साथ बिहेव करती हूँ, तो उसका ये मतलब है कि इस सिचुएशन में जो एंटायरली अनएक्सपेक्टेड है, अगर मैं उस सिचुएशन में बिहेव करूँ तो उसे भी हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में काउंट करेंगे। या अनप्रडिक्टेबिलिटी को समझने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि आपको कभी इंडिविजुअल के बारे में पता ही नहीं चलता है कि वो कभी कैसा है और एक पल में कैसा है और दूसरे ही पल वो किसी और ही तरह से बिहेव करता है, तो बहुत अनप्रडिक्टेबल किसी का बिहेवियर हो तो उसे भी हम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सिम्टम कहते हैं। अगला आता है विविडनेस या इंटेंसिटी, जिसका मतलब है जो ऐसे आप एक्सपीरियंस करते हो इस तरह की सिचुएशंस जो विच आर फार मोर विविड एंड इंटेंस देन दोज ऑफ अदर पीपल, मतलब कुछ और लोग जो बाकी लोग आपके अराउंड हैं वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, बट किसी चीज़ के सामने नहीं होते हुए भी आप कुछ ऐसी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सिम्टम है। अगला जो हमारा सिम्टम आता है वो आता है ऑब्जर्वर डिस्कम्फर्ट। ऑब्जर्वर डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि आप कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि आपके सामने वाले को एम्बेरसिंग लग रहा है, मतलब आपका सामने वाला इंसान बैठे बैठे ये सोच रहा है कि ये इस तरह से बिहेव कैसे कर सकता है, ये मतलब इस तरह से एक्सपेक्टेड नहीं है अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स बिहेव करना। जैसे कुछ लोग बिना बात के अपने वस्त्र उतार देते हैं, तो उसका मतलब है कि वो सामने वाले को भी एम्बेरस करता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है करना लेकिन किसी ने ऐसा कर दिया, तो वो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सिम्टम है। और एक और सिम्टम जो सातवां सिम्टम आता है उसे हम कहते हैं वॉयलेशन ऑफ मॉरल एंड आइडियल स्टैंडर्ड्स, मतलब जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो मॉरल स्टैंडर्ड सोसाइटी में बने हैं उन स्टैंडर्ड से हट के जब आप बिहेव करते हैं और वो आपकी हैबिट में आ गया है कि आप हैबिचुअल हो गए हैं इस चीज़ के कि आप सोशल नॉर्म्स से हटकर बात कर रहे हैं, तो उसे भी हम कहते हैं कि किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी कोई बहुत रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है। रिजिड का मतलब कहने का यही है कि अगर आज मैं नॉर्मली बिहेव कर रही हूँ तो अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिना बात के कभी मुझे गुस्सा आ भी सकता है क्योंकि मेरी ह्यूमन नेचर है, तो बिना बात के कहीं अगर मुझे गुस्सा आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एबनॉर्मल हो गई हूँ या मुझ में कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बट हाँ ऐसा ज़रूर है कि वो चीज़ अगर बार बार रेकरेंट है मेरे बिहेवियर पे, वो हैबिट बन गई है एबनॉर्मली गुस्सा करना, तो आप कह सकते हैं कि किसी तरह का डिसऑर्डर है। ये भी यही जैसे मैं कह रही हूँ, इसलिए ऐसे कहते हैं कि एबनॉर्मेलिटी जो है वो इस बात से डिटर्मिन की जाती है कि कितने डिग्री तक किसी का जो बिहेवियर है वो सोशल नॉर्म से डेविएट कर रहा है, सोसाइटी से डेविएट कर रहा है और लोगों को सोसाइटी में प्रॉब्लम। हाँ देखिए, अगर उनको रेकरेंटली ये चीज़ होती है और बिना किसी बात के होती है, मतलब कोई रीजन नहीं है, वो किसी भी बात पे गुस्सा करेंगे, चिल्लाने का बहाना ढूंढेंगे, तो ये डेफिनेटली किसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करती है। वो माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सिवियर भी हो सकती है, बट उसका जरूर कोई साइकोलॉजिकल कॉज है जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल को वो कर देती है, मतलब इंडिविजुअल को मजबूर कर देती है कि उसको इस तरह से बिहेव करना है क्योंकि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं।
और आप माइनर मीडियम और टीम को कैसे डिक्टेट करेंगे,
वो तो
कैसे?
जिस तरह से जब आप कहीं पे भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कुछ टेस्ट वो आपके करते हैं डिसऑर्डर को समझने के लिए, तो जो टेस्ट में आपके जिस तरह से स्कोर्स आते हैं तो वो स्कोर्स डिफाइन कर देते हैं, आपको कैटेगरी में डाल देते हैं कि आपका जो एबनॉर्मेलिटी है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर एबनॉर्मेलिटी। तो ये समझना, तो कहीं पे आप कोई प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो जब भी आप वहाँ जाएंगे तो वो कैटेगराइजेशन वहाँ पे हो जाए। देखिए ऐसी स्थिति में जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं ले जा सकते हो, तो आपको खुद साइकोलॉजिकल हेल्प जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट से लेनी पड़ेगी अगर वो आपका फैमिली मेम्बर है। एज पर साइकोलॉजिस्ट गाइडेंस और साइकेट्रिस्ट गाइडेंस आपको उस इंडिविजुअल को अपने तरीके से पहले अपने बेसिस पे मोल्ड करना पड़ेगा, जिस तरह से बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स, उन्हें पता है कि अगर कोई आने के लिए तैयार नहीं है तो उसको किस तरह से लेके आना है या कैसे सिचुएशन क्रिएट करनी है। जब भी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो रहता है वो रहता है फैमिली मेंबर्स का और क्लोज्ड फ्रेंड्स का. एक तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं हमारी सोसाइटी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को एक टैबू माना जाता है. मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही लोग ऐसा समझते हैं कि मतलब पागल ही जाते हैं. आप बिल्कुल जब अपना सेंसेस खो चुके हो, जब आपको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना है तभी आप ऐसा नहीं होता है.
ऐसा बिल्कुल नहीं.
आप अगर बाहर की कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे लोग इतने ज्यादा अवेयर हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए, वो गाइडेंस के लिए, अपने बच्चों के गाइडेंस के लिए कि मेरा बच्चा इतने टैंट्रम्स क्यों थ्रो करता है, क्यों इतना नाराज होता है, इतना गुस्सा होता है, उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प सीख करते हैं सो दैट उनका बिहेवियर जो है वो अच्छे से कंट्रोल कर सके. तो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कोई तैयार ही नहीं है जाने में तो उसमें फैमिली मेंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. मैं ये कहूँगी कि फैमिली मेंबर को अप्रोच करना चाहिए साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए और जो एज पर द प्रोफेशनल गाइडेंस उनको जो अपने घर का फैमिली मेंबर है उसका बिहेवियर एक लेवल तक मोल्ड करना चाहिए सो दैट वो इतना मोल्ड हो सके कि कोई इंडिविजुअल जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास आए प्रोफेशनल हेल्प के लिए. तो वो इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है
जी.
हाँ, इस केस में इमोशनल सपोर्ट देना और वो भी किस टैक्टिकली आप किस तरह से देंगे तो वो समझना वो आपको सिर्फ एक प्रोफेशनल हेल्प से ही पता चलता है. हाइपरकोंड्राइसिस जिसे कहते हैं कि कोई आगे भी हम पढ़ेंगे कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कहते हैं जिसमें इंडिविजुअल को किसी तरह का कोई बॉडी सिम्टम नहीं है पर फिर भी उसे उल्टी आ रही है बहुत, उसे फीवर हो रहा है बहुत, वो बहुत मतलब तो इसे कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. जैसे कि आपने जाना होगा कि मतलब काफ़ी केस स्टडीज़ भी ऐसी होती है और मेरे घर का ही एक ऐसा केस है मेरी अपनी छोटी सिस्टर का कि जब वो अपने मतलब मेरे पेरेंट्स जैसे जॉब करते थे तो उसको वो मेरे ग्रैंड मदर के पास छोड़ के आते थे लेकिन जब भी मेरी मदर वहाँ से वापस आती थी तो मेरी सिस्टर को फीवर हो जाता था. तो वो फीवर हो जाता था फिर वापस जाते थे और उसको जब मेरी मदर जाएंगी तो वो ठीक हो जाएगा. तो ऐसे कहते हैं ना क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो बड़े बुजुर्गों ने उन्हें कहा कि बच्चा जो है वो मदर को बहुत मिस करता है पेरेंट्स को
बिल्कुल, बिल्कुल.
तो उस वजह से बच्चे को फीवर आ जाता है. फिर काफ़ी हमने केस स्टडीज़ भी ऐसी होती है जिसमें ये जाना गया है कि काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं कि बच्चे को अगर ये पता चल जाए कि अगर मैं बीमार हूँगा तो मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलेगी तो वो चीज़ जो है वो बच्चे के बिहेवियर में इतनी स्ट्रांगली आ जाती है कि बच्चों को उसके फिजिकल सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं. तो कई बार विदाउट एनी बायोलॉजिकल और फिजिकल रीज़न साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी हमको फिजिकल रीजंस आने शुरू हो जाते हैं. तो ऐसा हो सकता है. अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ऐसा साइकोलॉजिकल अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है जो बहुत सिवियर होता है जिनको एक्चुअली में ज़्यादा बीमारी हो जाती है बट उसका कोई फिजिकल सिम्टम नहीं होता है.
जी.
बट वो यही है कि वो केयर पाने के लिए वो अटेंशन पाने के लिए वो अपनी बॉडी मतलब वो इस तरह से उनकी बॉडी हो जाती है कि उनको किसी तरह की बीमारी मतलब उनको फीवर होगा उनको किसी और तरह की प्रॉब्लम होगी खुजली हो जाएगी या कुछ होगा तो ये कॉजेस हो सकते हैं. उनमें से एक थ्योरी ये भी है कि हमारा जैसे एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है. कॉन्शियस माइंड तो वो है जो मैं और आप अभी बात कर रहे हैं. सबकॉन्शियस माइंड ये है जो कि किसी इंडिविजुअल में जो आपने अभी मुझे कहा कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं मुझ में बहुत स्ट्रेंथ है. तो वो कहते हैं कि जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जिस तरह से नर्चर करते हैं तो आपका वो कहते हैं ना वो पूरी कायनात मिलके वो चीज़ को पूरा करने में आपकी हेल्प करती है. तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह के नर्चर करेंगे कि नहीं आई कैन डू दिस आई विल डू दिस मैं कर लूँगा मैं पॉजिटिव थिंकिंग जितना पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो रिएक्ट ही इस तरह से करता है कि आपके कॉन्शियस माइंड में और आपके एक्शंस में डेली एक्शंस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाती है चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो चाहे वो पॉजिटिव चीज़ हो. बहुत सारी अगर आप साइकोलॉजी की बुक्स जो जनरल आती हैं या ऐसे पढ़ेंगे तो उसमें यही होता है कि अगर आप अपने मतलब यू जस्ट थिंक दैट योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ गार्डन. अगर आप गार्डन में फ्लावर्स को इम्प्लांट करेंगे तो आपको वही चीज़ इन रिटर्न मिलेगी. अगर थॉर्न्स को करेंगे तो आपको नेगेटिव चीज़ इन रिटर्न मिलेगी. तो वो ये है कि हम क्या सोच रहे हैं हमारी विल पावर क्या है हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं आई कैन डू दिस. तो जब मैंने माइंड को ट्रेन कर लिया इट इज़ द माइंड दैट इज कंट्रोलिंग माई बॉडी, ठीक है. तो जब मैंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो मुझे वो जो इनर स्ट्रेंथ है वो मिलेगी अंदर से, और मैं उसी तरह से काम करने की आगे प्रयास करूंगी.
जी,
तो ये जरूर होता है. अब हम वहीं पे आएंगे कि दो तरह के कॉजेस हो सकते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के. एक तो होता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर कि आपको एक्चुअली में किसी तरह का कुछ एबनॉर्मेलिटी है ब्रेन में, या किसी तरह के हॉर्मोनल सिक्रीशन में आपको प्रॉब्लम है, तो या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर्स या क्रोमोजोम्स का डिसफंक्शंस है, तो उस वजह से एक तो आपको एबनॉर्मेलिटी हो सकती है विच इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजी ऑफ योर बॉडी, ठीक है. कहीं पे भी, चाहे वो हॉर्मोन्स हो, चाहे वो आपका जीन्स हो, चाहे क्रोमोसोम्स का डिसफंक्शनिंग हो, या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है. तो एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं. एक तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, हमें नहीं पता कि इसको एबनॉर्मेलिटी क्यों हो रही है. और क्योंकि एक तो वो इनडायरेक्टली हम कैसे पता लगाएं कि डायरेक्ट कॉज क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकली क्या डायरेक्ट कॉज हो सकता है बिहेवियर का. और जो इसका इफेक्ट होता है, द इफेक्ट इज़ नॉट वेरी प्रिडिक्टेबल, बट इफ वन ट्राइज टू एनालाइज द वेरियस प्रोसेसेस अडॉप्टेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड लाइक ओवर प्रोटेक्शन और ओवर इंडल्जेंस, इनकंसिस्टेंट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, दीज फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट इन द डिवेलपमेंट ऑफ मैलअडैप्टिव बिहेवियर. कि जिस तरह से हमने कहा, जब अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो रीज़न है वो साइकोलॉजी भी हो सकता है इंडिविजुअल का, लेकिन उसका पता लगाना मुश्किल है क्योंकि वो डायरेक्टली हमें नहीं पता लग सकता. हम डायरेक्ट क्वेश्चंस किसी से नहीं पूछ सकते. लेकिन जब भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपका केस स्टडी बनाते हैं. वो केस स्टडी में पूरा केस हिस्ट्री लिखते हैं. केस हिस्ट्री में वो क्या लिखते हैं कि आपका बचपन किस तरह से बीता है, कितने सिबलिंग्स थे, कौन कौन आपके साथ था, आपके मतलब बर्थ ऑर्डर क्या था, पहला चाइल्ड था या सेकंड चाइल्ड थे या आप थर्ड चाइल्ड थे, आपको कितना अटेंशन मिलती थी, या आपका फैमिली में इश्यूज थे या नहीं थे. तो वो कंप्लीट हिस्ट्री बनाते हैं. फिर उस हिस्ट्री के बेसिस पे वो ये सोचते हैं कि जिस बच्चे में कई बार 5 साल में जो प्रॉब्लम उसने देखी होती है वो उसको 30 साल तक भी इफेक्ट कर रही होती है. तो कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं जिसको हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, लेकिन केस हिस्ट्री के थ्रू काफ़ी सारे इंडिविजुअल की पूरा इंटायर लाइफ की हिस्ट्री कैसे चली है उसको जानकर भी हम पता लगा सकते हैं कि साइकोलॉजिकल और डिसऑर्डर का क्या रीज़न हो सकता है. तो ये दो तरह के कॉजेज होते हैं. एक तो है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स कि आपका बायोलॉजी ही इस तरह की, आपके क्रोमोसोम्स या जीन्स या एंडोक्राइन सिस्टम किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, हार्मोनल सीक्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है. तो एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर जिसको पता लगाना मुश्किल, डायरेक्टली मुश्किल नहीं है पर उतना आसान भी नहीं है. क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर तो आपने ये टेस्ट कर लिया, वो टेस्ट कर लिया तो आपको पता चल गया, MRI कर लिया, ये CT स्कैन कर लिया कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम होगी. लेकिन जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसका रीज़न आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड है, आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, उसको पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है. क्योंकि उसमें आपको पूरा केस हिस्ट्री में घुसना पड़ता है कि किसी इंडिविजुअल के साथ क्या क्या हैपनिंग्स रही हैं थ्रू आउट, तो वो किस तरह से उसको इफेक्ट कर रही है. अब जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, तो वो अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें मेनली आते हैं आपका एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स और सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स. जब मैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करती हूँ सबसे पहले, तो एक तो ये बात है कि हम सब लोगों को कभी ना कभी एंजाइटी होती है. वो एंजाइटी चाहे हम लोग कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हों, कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हों, पेपर देने जा रहे हों, कहीं कोई प्रोग्राम करने जा रहे हों, कहीं पे भी एक नॉर्मल एंजाइटी किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल को होती ही होती है. और हमारे अपने अपने तरीके होते हैं इस तरह की एबनॉर्मेलिटी से ट्रीट करने के. लेकिन कभी कभी हो जाता है कि जब ये एंजाइटी कभी किसी डिसऑर्डर का रूप भी ले सकती है अगर हम इसको प्रॉपरली करेक्ट टाइम पे इसको हैंडल ना करें. एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को और सोशल फंक्शनिंग को ड्यू टू हाइपर एंजाइटी, जब एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. और एंजाइटी डिसऑर्डर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि इसमें एक आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. दूसरा आता है पैनिक डिसऑर्डर. तीसरा आता है फोबियाज. नेक्स्ट आता है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. फिर आता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर और फिर आता है पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. अब जब हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है और इसका चीफ सिम्टम ये रहता है आपकी, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी में जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, जब किसी का अनरियलिस्टिक और एक्सेसिव वरी हो। आपने कभी देखा होगा कि कुछ इंडिविजुअल बिना बात के बहुत ही ज्यादा परेशान है, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है परेशान होने की, फिर भी वो बहुत टू मच परेशान है,
बहुत छोटी छोटी बात,
छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा परेशान है। और जो वेरियस सिम्टम्स आपके इसके आते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के, वो आते हैं कि कोई नर्वस ज्यादा हो रहता है, किसी को चक्कर आ रहा है, डिजीनेस रहती है, पसीना पसीना होने लग गया, कोई घबराने लग गया, कांपने लग गया, या फिर किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिसको पता लगाने का यह तरीका है कि एक तो किसी इंडिविजुअल को बिना बात के, छोटी सी बात के बहुत ही ज्यादा एंजाइटी हो रही है, और दूसरा नर्वसनेस ज्यादा हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, नर्वसनेस हो रही है, पसीना निकल रहा है, कांप रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं ये इसमें सिम्टम्स हैं कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर किसी इंडिविजुअल में है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कोई चीज आपकी हैबिट में बार बार आ गई, वो आपकी हैबिट बन गई है, तो उसको आप फिर डिसऑर्डर कहेंगे। लेकिन अदरवाइज किसी को हमेशा ही ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, हर रोज किसी बात पे या हर दूसरे दिन किसी बात पे इतने ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हम कहेंगे। दूसरा आता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर होता है इंटेंस एंजाइटी अलॉन्ग विद मार्क्ड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज इंक्रीज्ड, जिसे हम पैनिक कर जाते हैं किसी भी चीज में, वही कि बहुत ज्यादा एकदम से हार्ट बीट तेज हो गई और सांस फूलना शुरू हो गया, सांस में दिक्कत आई, या ऐसा लगता है बिल्कुल हाथ बाजू में कोई जान ही नहीं रही, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, तो इस तरह के कुछ होते हैं जिसे हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर का केस है, एकदम से परेशान हो गए आप कहीं पे भी गए। और बिफोर एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ एंजाइटी, वैसे कामनेस जो होती है, पैनिक डिसऑर्डर का एक आप जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो पैनिक है वो आपको किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ज़्यादा आएगा। जैसे कोई इतना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग में कि कुछ लोग तो बेहोशी हो जाते हैं,
हाँ,
कुछ लोग बिल्कुल नम हो जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये डिसऑर्डर में क्या रहता है कि एक बार किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आया और ये आगे फिर इंडिविजुअल काम नॉर्मल हो गया। लेकिन ये भी एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। फिर नेक्स्ट आता है फोबिया। फोबियाज तो आपको पता है कितने अलग अलग तरह के, क्राउडेड प्लेसेस पे जाने का, हाइट का, पानी का, लोगों का, बहुत सारे फोबियाज होते हैं। वो होता है कि आपका जो इरेशनल फियर है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी सिचुएशन का। हम लोगों को, बहुत लोगों को बहुत सारे फियर्स होते हैं किसी ना किसी चीज़ के, लेकिन ये फियर जब एक ऐसे लेवल पे रीच कर जाता है जब आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को भी डिसरप्ट करने शुरू कर देता है, तो आप इसे कहेंगे कि किसी तरह का ज़्यादा मेजर फोबिया हो गया इसी इंडिविजुअल। जब वो इतना ज्यादा डरने शुरू हो जाते हैं कि नॉर्मली आप ऊंचाई पे कभी आप सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाओगे
जी,
कभी आप किसी हाइट पे खड़े ही नहीं हो पाओगे नॉर्मली। तो जैसे अब मैं हूँ, मैं हाइट पे जाऊंगी तो मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। मुझे पानी से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं डीप सी की तरफ जाऊं तो वो पानी की गहराई से मुझे डर लगता है। वो फोबिया नहीं है, फोबिया तब होगा जब मैं सी की तरफ जा ही ना पाऊं, मुझे लगे कि नहीं मैं जा ही नहीं पाऊंगी यहाँ पे, या फिर मुझे कोई कहे कि मुझे खड़े होना है हाइट पे तो मैं पहले सीढ़ियां ही नहीं चढ़ पाऊंगी कि मुझे स्टेयर्स पे चढ़ना है, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। देखिए ये तो एक्सपीरियंसेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब कुछ लोगों को किन्हीं चीजों से शुरू में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे अभी भी कुछ पुराने बुजुर्ग हमारे पास अभी भी ऐसे हैं, मतलब वी आर सो लकी कि अभी भी ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको चढ़ने से डर लगेगा, मतलब वो एक वो जनरेशन अभी भी, अब हमारे आजकल के बच्चे तो पैदा ही लिफ्ट पे हुए हैं मैं ऐसा कहूंगी, तो फिर वो आप कह सकते हो कि किसी तरह का फोबिया है जब वो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में वो कर रहा है, मतलब उसको डिसफंक्शन कर रहा है, तो वो फोबिया है, तो उसे आप फोबिया कहेंगे। फिर दूसरा आता है कि एक तरह का फोबिया ऐसा भी होता है जैसे सोशल फोबिया कहते हैं, जैसे कि आप, जैसे मैं कह रही थी स्टेज स्पीकिंग आप नहीं कर सकते हो, स्ट्रेंजर से आप बात नहीं कर सकते हो, और फियर ऑफ रैट्स होता है, फियर ऑफ इंसेक्ट्स होता है, ये भी मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के फोबिया। तो ये कुछ ऐसे फोबियाज हैं जो लोगों में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ की वो डिपेंड करता है। एक तो है कि आपकी बॉडी की अडेप्टेबिलिटी नहीं है, आप हमेशा से एक टेम्परेचर पे रहे और आप जब एक्सट्रीमली डिफरेंट टेम्परेचर पे रहेंगे और आप सोच के भी ऐसा जाएंगे कि ऐसे परेशानी होगी, तो वो नॉर्मली किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है. लेकिन मैं कह रही हूँ कि कभी कोई भी ऐसी चीज़, जैसे कि फोबिया होता है हाइट का, मुझे भी हाइट का फोबिया है, मैं ऊपर खड़े होके मैं नीचे नहीं देख सकती, मुझे डर लगता है, एकदम से धक धक होने लगती है. बट उसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऊपर चढ़ती नहीं हूँ, मैं जरूर जाती हूँ ऊपर, ठीक है. तो दैट मीन्स हाँ, नहीं खुद को चेक करने के लिए भी नॉर्मली भी तो जाना ही पड़ता है. अभी मैं यहाँ पे भी आई हूँ, ये भी एट अ हाइट है, मैं घर पे भी रहती हूँ तो वो भी एक मतलब हाई राइज बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, तो दैट मीन्स मैं जा पाती हूँ. इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है मेरी फंक्शनिंग को कि मेरी नॉर्मल फंक्शनिंग उससे डिस्टर्ब हो रही है. वो एक नॉर्मल चीज है, वो किसी में भी फियर हो सकता है इन चीजों का. लेकिन कोई ऐसी चीज की जब इतना ज्यादा फोबिया हो जाए कि मैं पहुंच ही ना पाऊँ, तो वो मुश्किल होता है. फिर नेक्स्ट रहता है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो बार बार हाथ धोते हैं, मतलब उनको एक ऐसा कंपल्शन होती है कि नहीं मुझे धोना ही है, ये गंदा है, ये साफ करना है, साफ सफाई से रखना है, या कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं. आपने कई बार कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा, उनको ऐसे थॉट्स आते हैं, वो बार बार देखते हैं ताला लगाया है या नहीं लगाया है, लगाया नहीं लगाया, मतलब फिर उनको लगता है लगाना है दोबारा, इस चीज़ को चार बार करना है, इस चीज़ को तीन बार करना है, नहीं किया तो ये नहीं होगा. तो जब ये चीज़ ज़्यादा हो तो भी वो एक तरह का मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी हम इसे मानते हैं. फिर आता है हमारा सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसको मैंने कहा था. सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर वो होता है कि किसी तरह का कोई भी फिजिकल सिम्टम आपको होता है, जैसे कि आपको फटीक हो गया या हेडेक हो गया या बॉडी पेन्स हो गई, लेकिन उसका किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, मतलब कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं है, तो भी उसे हम कहते हैं कि ये किसी तरह का डिसऑर्डर में मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आएगा, जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है. जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारे केसेस हम लोग ने ऐसे सुने हैं कि जिसमें बच्चा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के लिए वो उसको फीवर आने शुरू हो जाता है, तो वो भी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर एक तरह का है कि साइकोलॉजिकल सिम्टम है, कोई ऑर्गेनिक सिम्टम नहीं है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा मूड डिसऑर्डर. अब मूड डिसऑर्डर क्या होता है, ये एक्चुअली रिलेटेड है हमारे इमोशंस से, जैसे कि हाइटेंड इंटेंसिटी या ड्यूरेशन ऑफ इमोशन रिक्वायर इमीडिएट साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल अटेंशन. आपने कई बार कुछ लोगों को देखा होगा, वो एकदम से इतना ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा हंसने लग गए और बहुत ज़्यादा खुश हो गए, हाइटेंड उनका इमोशन हो गया, या कोई इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि मतलब उनको उस डिप्रेशन से समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया. तो ये भी मूड डिसऑर्डर होता है कि आप किस तरह से रहते हैं, और इस तरह के सिम्टम से जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें हम कहते हैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहते हैं इस तरह के लोग. थ्री टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं, जिसे हम कहते हैं एक तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कि कोई इंडिविजुअल डिप्रेशन में ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है. दूसरा रहता है बाइपोलर डिसऑर्डर्स. बाइपोलर डिसऑर्डर्स में आता है कि आप कभी बहुत खुश हैं और कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेशन और हैप्पीनेस आप में, मतलब कभी एक एक आप एक साइड के स्विंग पे, एक साइड पे हैं कॉन्टिन्यूम पे, और एक कभी दूसरे साइड पे, कभी बहुत खुश हैं कभी बहुत दुखी हैं. बाइपोलर डिसऑर्डर्स और कुछ अलग तरह के डिसऑर्डर्स. मूड डिसऑर्डर्स में सिवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे कि आपको अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, आपका एपेटाइट में चेंज हो जाएगा, या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, आपको सोने में दिक्कत आएगी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगी, साइकोमोटर फंक्शंस जो हैं वो आपके जो है कि किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं उस पर परेशानी आएगी, वेट लॉस हो जाएगा एकदम से, आप कुछ सोचने समझने की आप में वो क्षमता नहीं रह जाएगी. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जब हाइटेंड हो जाए, मूड डिसऑर्डर हो जाए, तो परेशानी हो जाती है. फिर नेक्स्ट हमारा आता है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर. सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार ये देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ पेन और टेंशन में जब कोई रहते हैं, ये आजकल के बच्चों में और नौजवानों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि अपनी टेंशन और एनजाइटी से हटने के लिए जो हैं वो सब्सटेंसेस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने शुरू हो गए हैं. सब्सटेंसेस मतलब ड्रग्स, ड्रग्स लेने शुरू हो गए. वो ड्रग्स क्यों लेते हैं, उससे क्या होता है कि जैसे कि ये ड्रग्स होती है जो अल्कोहल हो गया, ये सब चीज़ें हमारे थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी एक्शंस को और एक्टिविटीज़ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं. ये जो ड्रग्स होते हैं, अगर हम ज़्यादा टाइम तक इन लोग इन ड्रग्स को यूज़ करेंगे तो क्या रहेगा कि ये हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं. लोग जो हैं बहुत सारे पर्सनल और सोशल जो उनका जो प्रॉब्लम्स होती है ना उससे डील करते हैं. जैसे किसी का डेथ ऑफ अ लव्ड वन हो गया, या आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस रहती हैं एडोलेसेंट्स में रिलेशनशिप्स को लेके, तो उनमें किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो गया तो वो फटाफट क्या करते हैं, ड्रग्स पे रिलाई करने शुरू कर देते हैं. तो जो सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो सिर्फ अल्कोहल तक ही नहीं लिमिटेड होते हैं, बहुत तरह की डिसऑर्डर्स इसमें आते हैं. और इसमें टोबैको, ओपियम, मैरिजुआना यूज़ वगैरह भी जो बच्चे करते हैं, उस बच्चे बड़े बूढ़े जो भी करते हैं, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आता है. और कोई भी इंडिविजुअल जो इससे सफ़र कर रहा होता है उसके लिए फॉलोइंग इश्यूज इम्पॉर्टेंट हैं. वो इश्यूज हैं डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है. और हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं इस तरह से कि जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएं. विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि जब भी आप कोई एडिक्ट हैं किसी ड्रग के, जब आप उस एडिक्शन से डी एडिक्ट होना शुरू करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू होते हैं. वो विड्रॉल सिम्टम्स कैसे होते हैं कि आप एनजाइटी आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रेविंग आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो कुछ इस तरह के ड्रग्स दी जाती हैं, मेडिसिन दी जाती हैं जिससे विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं थोड़े कम हो जाते हैं. एवर्सिव कंडीशनिंग की जाती है. एवर्सिव कंडीशनिंग होता है किसी तरह का, आपने अगर ड्रग लोगे तो आपको कोई नेगेटिव उसका मतलब आपको शॉक ट्रीटमेंट देंगे या कुछ इस तरह से करेंगे, तो सो दैट आपको वो चीज़ जो है आप उससे हटो कि आप नहीं लोगे ये दोबारा. फिर साइकोथेरेपी की काउंसलिंग करना है, थेरेपी करनी है वो रहती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाते हैं और प्रिवेंशन और फॉलोअप में भी जाते हैं. आज हम लोग इसी टॉपिक को अपने नेक्स्ट सेशन के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज अभी काफ़ी सारे और भी इसमें एरियाज रहते हैं जो डिस्कस करने के लिए बाकी हैं. देखिए वो चीज़ है कि सोसाइटी और कल्चर किस तरह से बदल रहा है और बढ़ रहा है, वो किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों की है, हर एक घर में यही इशू है. अब उसका क्या रीज़न है कि इम्पोर्टेंस किस तरह से बच्चों को अटेंशन बहुत दी जाती है, क्योंकि एक बच्चा है उसकी सब डिमांड, उसमें पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है. बच्चों को रोने ही नहीं देना है, मतलब आप देखेंगे कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है कि बच्चे रोने नहीं चाहिए, तो उसके लिए बच्चे अगर कुछ भी मांग रहे हैं तो आप उनको वो गिफ्ट कर देंगे. तो सबसे पहला रोल तो पेरेंट्स का और फैमिली मेंबर्स का रहता है. दूसरा, बच्चों को बहुत तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत होती है. तो मैं तो खुद भी ये कहूँगी और बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि अगर आपको लगे कि कोई चीज़ हाइटेंड हो रही है तो एक काउंसलिंग, जो डेवलपमेंटल काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ के साथ डील करते हैं, अगर हम उनसे काउंसलिंग ले लें तो हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती है. मतलब हमें पता चल जाता है कि क्या तरीका है, किस तरह से बच्चों को हम मोल्ड कर सकते हैं. लेकिन सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है कि जब भी साइकोलॉजी कल काउंसलिंग की बात हम करते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि मतलब वो सिर्फ अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है. ये मैं सबको बताना चाहूंगी कि इट इज़ नॉट ऑलवेज अ मेंटल डिसऑर्डर. इसे हम कहते हैं कि कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी में भी आ सकती है, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में. अगर इस तरह के थोड़े बिहेवियरल सिम्टम्स आपको लगता है कि आते हैं और वो आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो एक काउंसलिंग लेने में कोई हर्ज नहीं है. जाने से पहले ब्रीफली इस टॉपिक को अंत करने के लिए मैं दो और डिसऑर्डर्स की बात करूंगी. एक हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग मेंटल डिसऑर्डर, जो सबसे सिवियर मेंटल डिसऑर्डर रहता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है, वो स्किज़ोफ्रेनिया होता है. और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे आपका अटेंशन, परसेप्शन, थॉट्स, इमोशंस, ये सब डिस्टर्ब रहते हैं. और इससे आपकी सीरियस मैलएडजस्टमेंट्स हो जाती हैं. और जो भी लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो अपने आसपास जो भी हैपनिंग्स हो रही होती हैं उन्हें अच्छे से परसीव नहीं कर पाते हैं, उनका इनकरेक्ट परसेप्शंस होती हैं. पांच तरह का स्किज़ोफ्रेनिया होता है. एक है कैटाटोनिक, जिसमें कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में अनयूजुअल मोटर एक्टिविटी होती है, मतलब जो बॉडी मूवमेंट्स होती है वो अनयूजुअल होती है, बहुत ज़्यादा हाथ हिलाना, टांग, कुछ भी करना वो अनयूजुअल रहता है. डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें वर्बल एसिमेट्री रहती है और आइडियाज़ पुअरली डिवेलप्ड होते हैं. पैरानॉइड होता है, जिसमें आप प्री ऑक्यूपाइड रहते हो किसी एक ही सेट ऑफ आइडियाज के साथ कि ऐसा ही करना है तो ऐसा ही होगा. बहुत सिवियर मेंटल सिम्टम्स होता है. फिर रहता है अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें हेलुसिनेशंस होती है, मतलब जो नहीं एग्जिस्ट करता है, आपको कोई ऐसी आवाज सुनाई
दिख रहा है
या दिखाई देगा. और एक होता है रेजिडुअल, जिसमें विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, आप सब लोगों से विड्रॉ करके रहना चाहते हो, अलग से रहना चाहते हो. तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ टाइप्स होते हैं. फिर एक हमारा रहता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जो लास्ट आता है. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में एक हमारे एसएलएम में ही एक छोटा सा टॉपिक केस स्टडी दी गई है कि कोई राम मोहन है कि वो एक क्लर्क है, लेकिन जब वो अपना काम अच्छे से करता है जो भी उसे दिया जाता है, लेकिन जब उसकी प्रमोशन की टर्न आती है तो उसके जो सीनियर्स हैं वो भी इस बात के लिए श्योर नहीं है कि उसकी प्रमोशन की जाए या नहीं की जाए. वो क्यों है कि क्योंकि राम मोहन में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बिहेवियर है. वो छोटी से छोटी चीज़ के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहता है, तो वही एक तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है. तो ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो जिसकी हमने चर्चा इस आज के हमारे लेसन में की, जो कि है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसमें लास्ट आता है.